آج کل،
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम यहूदी देश बनाए जाने के कानून की समीक्षा करेंगे। स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
जुलाई वर्ष 2018 को ज़ायनिस्ट संसद ने यहूदी देश बनाए जाने पर आधारित एक कानून पारित किया। आज के कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों की दृष्टि से यहूदी देश बनाए जाने के कानून और इस कानून के प्रति विश्व समुदाय की प्रतिक्रिया की समीक्षा करेंगे।
नस्ल भेद के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 21 दिसंबर 1965 को पारित किया गया। इस कन्वेंशन में हर प्रकार के भेदभाव से दूर रहने की बात की गई। इस अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में हर प्रकार के नस्ली भेदभाव से दूर करने की परिभाषा में आया कि हर प्रकार के भेदभाव को जातिवाद या नस्ली भेदभाव कहा जा सकता है, जिसका लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से असमानता हो। इस बात की दृष्टिगत ज़ायोनी शासन की संसद ने 19 जुलाई को यहूदी देश बनाए जाने पर आधारित जो कानून पारित किया गया वह नस्ली भेदभाव का खुला प्रतीक है, क्योंकि यह कानून यहूदी जाति के श्रेष्ठ होने पर बल देता है।
इस कानून के अनुसार फिलिस्तीनी भूमि यहूदी राष्ट्र का ऐतिहासिक वतन होगा। ये कानून हिब्रू भाषा को यहूदियों की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। इसी तरह यह कानून कुद्स नगर को ज़ायनिस्ट शासन की राजधानी के रूप में मान्यता देने के अलावा फिलिस्तीन की अतिग्रहित भूमियों में ज़ायोनी कॉलोनियों में विस्तार का भी समर्थन करता है। ज़ायनिस्ट शासन के इस कानून की जितनी भी समीक्षा की गई और उस पर जितनी भी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की गईं, सब में इस कानून को नस्ल भेद का स्पष्ट उदाहरण बताया गया।
अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की भूमिका में हर उस श्रेष्ठता को रद्द किया गया है और उसकी भर्त्सना की गई है जिसका आधार जातिवाद हो और सामाजिक दृष्टि से वह अन्यायपूर्ण और खतरनाक है और किसी प्रकार से उसका औचित्य नहीं दर्शाया जा सकता। जाति, रंग या नस्ल के आधार पर लोगों के मध्य भेदभाव राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण संबंधों की दिशा में बहुत बड़ी बाधा है और यह चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इसी प्रकार एक देश या सरकार के भीतर शांतिपूर्ण संबंधों में विघ्न उत्पन्न कर सकती है और मानव समाज की आकांक्षाएं और नस्ल भेद पर आधारित रुकावटें एक साथ नहीं हो सकती।
इन सब बातों के दृष्टिगत कहना चाहिए कि नस्ल भेद भर्सनीय है और सामाजिक दृष्टि से वो खतरनाक है। मित्रतापूर्ण संबंधों की दिशा में बहुत बड़ी रुकावट है और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरे में डालता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों में स्पष्ट शब्दों में नस्ल भेद और जातिवाद की भर्त्सना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अलावा दूसरे विभिन्न कानून और घोषणा पत्र भी हैं जिनमें नस्लवाद और जातिवाद की निंदा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में भी नस्लवाद की निंदा की गई है। मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में भी बल देकर कहा गया है कि समस्त इंसान हैसियत, प्रतिष्ठा और अधिकार की दृष्टि से समान है। इसी प्रकार इस घोषणा पत्र में बल देकर कहा गया है कि नस्ल एवं वंश की दृष्टि से समस्त इंसान बराबर हैं। इसी प्रकार मानवाधिकार के इस घोषणा पत्र में बल देकर कहा गया है कि कानून के मुकाबले में सब बराबर हैं और सबको किसी प्रकार के भेदभाव के बिना समान कानूनी अधिकार प्राप्त हैं।
बहरहाल, एक यहूदी देश का कानून नस्ली सफाया, मानवता विरोधी अपराध, युद्ध अपराध और अतिक्रमण जैसे अपराधों का स्पष्ट उदाहरण है और यह वह चीज़ें हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है। रोम घोषणा पत्र में भी किसी गुट के सदस्यों को शारीरिक या मानसिक पीड़ा देने को नस्ली सफाई का नाम दिया गया है और एक यहूदी देश बनाए जाने के संबंध में जो कानून पारित किया गया है उसे फिलिस्तीनियों को भारी शारीरिक व मानसिक पीड़ा पहुंचेगी। इसी प्रकार रोम घोषणा पत्र में उस चीज को युद्ध अपराध का नाम दिया गया है जो शारीरिक व मानसिक पीड़ा का कारण बनती हो।
इसराइली संसद ने एक यहूदी देश बनाए जाने के संबंध में जो कानून पारित किया नस्ल भेदी होने के कारण उसकी फिलिस्तीनियों गैर फिलिस्तीनी हस्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी निंदा की है। फिलिस्तीन के जिहाद इस्लामी आंदोलन के एक नेता यूसुफ अल हसाइने ने इस कानून की प्रतिक्रिया में बल देकर कहा, ज़ायोनिस्ट शासन की संसद में एक यहूदी देश बनाए जाने के संबंध में पारित होने का कानून नस्लवाद और घृणा का प्रतीक है। इस कानून से ये बात सिद्ध होती है कि अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि ज़ायोनिस्ट शासन अतिग्रहित फिलिस्तीनी भूमियों में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह कानून इसी प्रकार जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे की और अधिक भूमियों को ज़ायोनी कब्ज़ों में देने का मार्ग प्रशस्त करता है और इस कानून के लागू होने की स्थिति में बैतुल मुक़द्दस और फिलिस्तीन के अतिग्रहित दूसरे क्षेत्रों में फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालने का नया क्रम आरंभ हो जाएगा। यहाँ इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय और रोम घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि किसी को ज़बरदस्ती निकालना या भगाना खुला मानवता विरोधी अपराध है।
मलेशिया में इसराइल बहिष्कार आंदोलन के नेता मोहम्मद नजरी इस्माइल इस संबंध में कहते हैं कि इस शासन ने दुनिया को दिखा दिया है कि उसका आधार जातिवाद व नस्ल भेद है और इस शासन के लिए नस्ल भेद से बेहतर कोई दूसरा शब्द नहीं मिल सकता। जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका की नस्ल व रंग भेदी सरकार का राष्ट्रों और सरकारों ने बहिष्कार किया था, उसी तरह से पूरी दुनिया में इसराइल का भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। जॉर्डन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अर्राय में अरब पत्रकार जॉर्ज जरीफ ने लिखा कि इसराइली संसद कनेसेट में इस कानून का पारित होने का अर्थ नस्ल भेदी व्यवस्था की मजबूती है और इसराइल इस कानून को पारित करके फिलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ल भेद को लागू कर रहा है।
एक दूसरा अरब पत्रकार मुअफ्फक मुतीर फिलिस्तीनी पत्रिका अल हयातुल जदीदा में लिखता है कि इसराइल की संसद में अतिवादी और नस्ल भेदी प्रतिनिधियों ने इस कानून के पक्ष में मत देकर इस वास्तविकता को स्पष्ट कर दिया है कि इसराइल एक अतिग्रहणकारी और नस्ल भेदी सरकार है।
एक अन्य अरब पत्रकार फायज रशीद भी समाचार पत्र अल वतन में लिखता है कि यहूदी देश के कानून का पारित होना अपेक्षा से परे कार्य था और इसराइल जैसी फासीवादी सरकार से इसके अलावा कोई दूसरी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। इस कानून का अर्थ ज़ायोनी नस्ल भेद की मजबूती, फिलिस्तीनियों को अपनी मातृभूमि में वापसी के अधिकार को खत्म कर देना और ज़ायोनी कॉलोनियों के निर्माण को कानूनी रूप देना है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बल देकर कहा है कि इसराइल द्वारा एक यहूदी देश के कानून के पारित होने का अर्थ फिलिस्तीनियों के खिलाफ अतिग्रहित भूमियों में नस्ल भेद को वैधता प्रदान करना है। इसी प्रकार इस संगठन ने स्पष्ट करके कहा है कि इस समय फिलिस्तीन के अतिग्रहित क्षेत्रों की कुल संख्या का 20% भाग फिलिस्तीनी है और अब उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाएगा।
इस्लामी देशों की सांस्कृतिक संस्था आईसिस्को ने भी एक विज्ञप्ति जारी करके इसराइली संसद में पारित कानून को नस्लवाद का उदाहरण बताया और उसे रद्द करते हुए विश्व समुदाय का आह्वान किया है कि वह इस नस्लभेदी कानून को स्वीकार न करे और उसने इसराइली संसद में पारित होने वाले कानून को फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की संज्ञा दी है।
वास्तविकता यह है कि इसराइली संसद में एक यहूदी देश बनाए जाने के संबंध में पारित होने वाला कानून पहला और आखिरी कानून नहीं है। कतर की अल जजीरा साइट ने इसराइली संसद में पारित होने वाले कुछ नस्ल भेदी कानूनों की ओर संकेत किया और लिखा कि 6 फरवरी 2017 को जायनी कॉलोनियों के निर्माण को सुव्यवस्थित बनाए जाने के संबंध में कानून पारित हुआ। नवंबर 2016 को कुछ स्थानों पर अरबी भाषा प्रयोग न करने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसी प्रकार 13 नवंबर 2016 को अजान न प्रसारित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। और ये सब जायनी संसद में पारित होने वाले नस्ल भेदी कानून के कुछ नमूने हैं।
इससे पहले जुलाई 1998 में राष्ट्रसंघ की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति ने स्पष्ट शब्दों में इसराइल को एक नस्ल भेदी सरकार कहकर उसकी आलोचना की थी और घोषणा की थी कि 1998 में पारित होने वाले कानून के अनुसार फिलिस्तीनियों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। इसी मध्य पश्चिम एशिया के लिए राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक आयोग ने मार्च 2017 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें ज़ायनी शासन पर फिलिस्तीनियों के साथ नस्ल भेदी व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। इस आयोग के तत्कालीन राष्ट्र संघ के महासचिव के सहायक रीमा खलफ ने कहा था कि यह पहली बार है जब राष्ट्र संघ से संबंधित किसी संस्था ने खुल्लम खुल्ला इसराइल को एक नस्ल भेदी सरकार की संज्ञा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद रीमा खलफ से मांग की थी कि वह अपनी रिपोर्ट को वापस ले लें, परंतु उन्होंने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।
इसराइल को जो नस्लभेदी सरकार की संज्ञा दी गई है वो केवल गैर इसराइलियों तक सीमित नहीं है बल्कि स्वयं इसराइल की कुछ हस्तियों और नेताओं ने भी उसे नस्लभेदी सरकार की संज्ञा दी है और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाइयों की वर्णना करते हैं। इसराइल की मेट्स पार्टी के नेता जहावा गोलेन ने पिछले वर्ष तेल अवीव विश्वविद्यालय से संबंधित एक सुरक्षा संस्था की कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए कहा था कि जो कुछ फिलिस्तीन की अतिग्रहित भूमियों में हो रहा है वो नस्लभेद है और इसराइल ने दसियों लाख फिलिस्तीनियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया है।
यह बात सिद्ध हो गई है कि इसराइल नस्लभेदी कार्रवाइयां और मानवता विरोधी अपराध कर रहा है। फिर भी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहूदी देश कानून को लागू होने से रोकने के लिए ज़ायोनी शासन पर दबाव नहीं डाला गया। शायद इसकी वजह यह है कि विश्व समुदाय इस परिणाम पर पहुंच गया है कि इसराइल को यूरोपीय और पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका का व्यापक समर्थन प्राप्त है और इसी समर्थन की छत्रछाया में वह फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपराधों को जारी रखे हुए हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है।